स्वागत। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कह सकते हैं बेहद जरूरी अध्याय, फसल उत्पादन और प्रबंधन यानी क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, इसकी गहराइयों में उतर रहे हैं।
नमस्कार। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ा है।
हाँ, मतलब ये अध्याय असल में उस पूरी कहानी को खोलता है कि हमारी थाली में जो खाना आता है वो खेतों से हम तक पहुँचता कैसे है, है ना?
सही कहा। ये सिर्फ खेती के तरीकों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी की नींव है।
तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इस अध्याय के सार को, इसके जो सबसे अहम हिस्से हैं, उनको पकड़ा जाए, समझा जाए, और वो भी बिल्कुल सरल और दिलचस्प अंदाज में।
हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ अध्याय में दी गई जानकारी तक ही सीमित रहें।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी भरी बातचीत।
जरूर। देखिए, एग्रीकल्चर यानी कृषि, ये तो मानव सभ्यता का आधार स्तंभ है। ये वो विज्ञान और कला है जिसमें हम भोजन, फाइबर और दूसरी जरूरतों के लिए पौधे उगाते हैं, पशुओं को पालते हैं। और ये अध्याय हमें सीधे ले जाता है फसल उगाने की प्रक्रिया में। मतलब जब बड़े पैमाने पर एक ही तरह के पौधे उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं।
अच्छा।
और ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे बढ़ती आबादी की भोजन जरूरतें पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर टेक्निक्स में लगातार विकास हुआ है।
हाँ।
यह अध्याय उन्हीं बुनियादी तकनीकों की बात करता है।
हाँ, और शुरुआत होती है ये समझने से कि फसलें भी अलग अलग तरह की होती हैं, है ना, मौसम के हिसाब से। अध्याय में खरीफ और रबी क्रॉप्स का जिक्र है।
बिल्कुल, खरीफ और रबी
ये महज दो नाम नहीं है बल्कि भारत के कृषि चक्र की बुनियाद है।
सही कहा। ये वर्गीकरण सीधे तौर पर मौसम पर, खासकर मानसून पर निर्भर करता है।
अच्छा।
पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की, इन्हें हम मॉनसून क्रॉप्स भी कह सकते हैं।
मॉनसून क्रॉप्स, हाँ।
ये फसलें बरसात के मौसम में आमतौर पर जून जुलाई में बोई जाती हैं और इन्हें बढ़ने के लिए गर्म, नम मौसम और पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है।
ओके।
सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। उदाहरण के लिए धान यानी पैडी, मक्का यानी मेज, सोयाबीन, मूंगफली यानी ग्राउंड नट, कपास यानी कॉटन। सोचिए, भारत में बारिश का कितना बड़ा रोल है चावल जैसी मुख्य फसल के लिए।
बिल्कुल, धान को तो बहुत पानी चाहिए।
हाँ, फिर दूसरी तरफ है राबी क्रॉप्स, जिन्हें विंटर क्रॉप्स कहा जाता है। ये मॉनसून के बाद अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं।
अच्छा, सर्दी वाली फसलें।
हाँ, इन्हें अंकुरण के समय थोड़ी गर्मी और बढ़ने के लिए ठंडा सूखा मौसम चाहिए। गेहूं यानी वीट, चना यानी ग्राम, मटर यानी पी, सरसों यानी मस्टर्ड, अलसी यानी लिनसीड, ये सब इसके मुख्य उदाहरण है।
अरे वाह, तो इसका मतलब है कि हमारी रोटी जो गेहूं से बनती है और चावल जो धान से, इनकी फसलें बिल्कुल अलग अलग मौसम और परिस्थितियों की उपज है।
बिल्कुल।
और ये जानना भी रोचक है, जैसा अध्याय में है, कि गेहूं जैसी फसलें कितनी पुरानी है। करीब 8000 ईसा पूर्व मध्य पूर्व में इन्हें उगाना शुरू हुआ था।
हाँ, ये कृषि के इतिहास की एक झलक है।
चलिए अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसके जरिए ये फसलें उगाई जाती हैं। अध्याय में सात मुख्य कृषि पद्धतियां मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। ये एक तरह से किसान की चेकलिस्ट है।
हाँ, कह सकते हैं फसल उगाने का पूरा रोड मैप।
तो पहला कदम क्या है इसमें?
सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है मिट्टी तैयार करना, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। ये समझिए नींव रखने जैसा है।
अच्छा, नींव रखना।
हाँ, फसल बोने से पहले मिट्टी को इस लायक बनाना पड़ता है कि बीज उसमें पनप सके। इसमें मुख्य प्रक्रिया है प्लाउइंग या टिलिंग, मतलब मिट्टी को उलटना पुलटना और ढीला करना।
अच्छा, जुताई।
हाँ, जुताई। इससे होता क्या है, ढीली मिट्टी में हवा आसानी से आ जा सकती है, जो जड़ों की सांस लेने के लिए जरूरी है। जड़ें गहनाई तक जा पाती हैं, पौधा मजबूती से खड़ा रहता है।
सही है।
और फायदे भी हैं, जुताई से खरपतवार मतलब वीड्स वो जड़ से उखड़ जाते हैं।
हाँ, ये भी है।
साथ ही मिट्टी में खाद या उर्वरक मिलाने पे वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, और ये ढीली मिट्टी केंचुओं और जो फायदेमंद सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए भी बढ़िया माहौल बनाती है, जो मिट्टी की उर्वरता मतलब फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उसे ह्यूमस से समृद्ध करते हैं।
अच्छा, तो जुताई के बहुत फायदे हैं।
बिल्कुल। प्लाउइंग के बाद अक्सर लेवलिंग की जाती है, मतलब खेत को समतल करना, जिसके लिए लेवलर का इस्तेमाल होता है।
लेवलिंग क्यों जरूरी है?
ताकि सिंचाई का पानी पूरे खेत में एक समान फैले, कहीं ज्यादा कहीं कम ना हो, और बीज बोते समय भी आसानी रहती है, मिट्टी का कटाव भी कम होता है इससे।
ओके।
इसके लिए पारंपरिक हल, प्लाव, कुदाल, हो से लेकर ट्रैक्टर से चलने वाले आधुनिक कल्टीवेटर तक इस्तेमाल होते हैं। कल्टीवेटर से समय और मेहनत दोनों बचते हैं।
तो मतलब मिट्टी को एक तरह से रिचार्ज किया जाता है, फिजिकली भी और बायोलॉजिकली भी, बीज का स्वागत करने के लिए।
हाँ, कह सकते हैं।
अब जब मिट्टी तैयार है तो अगला कदम है बुआई, सोइंग, यानी बीज बोना। इसमें क्या खास ध्यान रखना होता है?
बिल्कुल, सोइंग एक बेहद नाजुक और अहम प्रक्रिया है। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि बीज अच्छी क्वालिटी के हों।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है।
स्वस्थ, रोग मुक्त और अच्छी उपज देने वाले। किसान अक्सर बीजों का चुनाव बहुत ध्यान से करते हैं। फिर बात आती है उन्हें बोने की। बीजों को न तो बहुत सतह पर बोना है वरना पक्षी खा जाएंगे।
अच्छा।
और ना ही बहुत गहराई में वरना वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे।
सही गहराई जरूरी है।
सही दूरी भी जरूरी होगी।
हाँ बिल्कुल, बीजों के बीच उचित दूरी मतलब स्पेसिंग रखना भी महत्वपूर्ण है। अगर पौधे बहुत पास पास उगेंगे तो उन्हें पर्याप्त धूप, पानी और पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, उनमें मुकाबला बढ़ जाएगा।
अच्छा।
बुआई के तरीके भी बदले हैं। पारंपरिक तरीका है ब्रॉडकास्टिंग, यानी हाथ से बीजों को खेत में बिखेर देना। ये सरल है पर इसमें बीज समान दूरी और गहराई पर नहीं गिरते।
हाँ, वो अंदाजे से होता है। बिल्कुल, आधुनिक तरीका है सीड ड्रिल का इस्तेमाल, जिसे ट्रैक्टर से चलाया जाता है।
सीड ड्रिल? हाँ।
इसमें एक फनल में बीज भरे होते हैं और मशीन उन्हें कतारों में समान दूरी पर और सही गहराई पर बोती जाती है। साथ ही बीज मिट्टी से ढक भी जाते हैं, जिससे पक्षियों से बचाव होता है और अंकुरण बेहतर होता है। ये पारंपरिक तरीके से कई ज्यादा कुशल है। कुछ फसलों में जैसे धान, टमाटर, मिर्च, इनमें एक और तकनीक अपनाई जाती है, ट्रांसप्लांटेशन।
ट्रांसप्लांटेशन वो क्या है?
इसमें बीजों को पहले नर्सरी में उगाकर छोटे पौधे मतलब सीडलिंग्स तैयार किए जाते हैं।
अच्छा, पहले पौधे तैयार करते हैं।
हाँ, फिर इन स्वस्थ पौधों को चुनकर मुख्य खेत में सही दूरी पर रोपा जाता है। इससे सिर्फ स्वस्थ पौधे ही खेत में लगते हैं और स्पेसिंग भी एकदम सटीक रहती है, जिससे उपज बढ़ती है।
अच्छा, ये धान में तो मैंने देखा है।
हाँ, धान में ये बहुत आम है।
बीज बो दिए, अब उन्हें पोषण चाहिए बढ़ने के लिए। यहीं पर खाद और उर्वरक देने का काम आता है। मिट्टी में इन्हें मिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या मिट्टी में अपने पोषक तत्व काफी नहीं होते?
देखिए, जब एक ही खेत में बार बार फसलें उगाई जाती हैं, तो पौधे मिट्टी से लगातार पोषक तत्व लेते रहते हैं। इससे मिट्टी में धीरे धीरे इन जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। अगर इन पोषक तत्वों की भरपाई न की जाए तो अगली फसल कमजोर होगी और उपज घट जाएगी।
अच्छा।
इसीलिए किसानों को मिट्टी में मन्योर और फर्टिलाइजर्स मिलाने पड़ते हैं।
मन्योर और फर्टिलाइजर्स, इनमें क्या फर्क है?
हाँ, ये समझना जरूरी है। मन्योर एक जैविक खाद है जो गोबर, पौधों के अवशेष और अन्य जैविक कचरे के गलने सड़ने मतलब डिकम्पोजिशन से बनती है।
अच्छा, गोबर खाद वगैरह।
हाँ वही। ये मिट्टी के लिए एक तरह का टॉनिक है। ये ना सिर्फ पोषक तत्व देती है बल्कि मिट्टी की बनावट, उसका स्ट्रक्चर सुधारती है, उसमें पानी रोकने की क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है और उसे हवादार पोरस बनाती है। ये मिट्टी के दोस्त यानी फायदेमंद जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ाती है। फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट जैसे वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर इसके उदाहरण हैं।
तो ये तो बहुत अच्छी चीज हुई।
हाँ, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये धीरे धीरे असर करती है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत सटीक नहीं होती।
अच्छा।
दूसरी तरफ है फर्टिलाइजर्स। ये फैक्ट्रियों में बने रासायनिक पदार्थ हैं।
केमिकल वाले?
हाँ, केमिकल वाले, जो मिट्टी को बहुत तेजी से और लक्षित तरीके से पोषक तत्व देते हैं, खासकर नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K, जिन्हें संक्षेप में NPK कहते हैं।
NPK, हाँ सुना है।
यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटाश, ये सब फर्टिलाइजर्स के उदाहरण हैं। ये इस्तेमाल में आसान है, इनका असर जल्दी दिखता है और ये खास पोषक तत्वों की कमी को तुरंत पूरा कर सकते हैं।
तो मतलब मन्योर मिट्टी की सेहत सुधारता है लंबे समय के लिए, जबकि फर्टिलाइजर एक तरह का क्विक फिक्स या टारगेटेड बूस्ट है।
हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। फर्टिलाइजर से उपज तो बढ़ती है, लेकिन इनके बहुत ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता खराब हो सकती है। ये पानी को भी प्रदूषित कर सकते हैं।
ओह।
इसलिए इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। आदर्श स्थिति वो है जहाँ मन्योर और फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग हो।
ठीक है।
मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के और भी तरीके हैं जिनका जिक्र अध्याय में है। एक है फैलोइंग।
फैलोइंग मतलब?
मतलब खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना।
अच्छा, परती छोड़ना जिसे कहते हैं।
इस दौरान मिट्टी प्राकृतिक रूप से अपनी खोई हुई उर्वरता वापस पा लेती है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्र।
फसल चक्र?
हाँ। इसमें एक ही खेत में अलग अलग फसलें बारी बारी से उगाई जाती हैं, जैसे एक बार गेहूं या मक्का जैसी अनाज वाली फसल उगाई तो अगली बार दालें या मटर जैसी फलीदार मतलब लेग्यूमिनस फसल उगा ली।
फलीदार फसलें क्यों, उनमें ऐसा क्या खास है?
फलीदार पौधों की जड़ों में खास गांठें होती हैं, रूट नोड्यूल्स,
हाँ,
जिनमें राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को सीधे सोखकर उसे ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकें, जैसे अमोनिया या नाइट्रेट्स।
अरे वाह,
इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है जो अगली फसल के काम आती है। ये प्रकृति का अपना तरीका है मिट्टी को उर्वर बनाने का।
वाह, ये तो कमाल का तालमेल है प्रकृति और कृषि के बीच।
अच्छा, मिट्टी तैयार, बीज बो दिए, पोषण भी मिल गया, लेकिन एक चीज है जिसके बिना सब अधूरा है, पानी।
बिल्कुल, यहीं पर सिंचाई का महत्व सामने आता है।
बिल्कुल सही, पानी जीवन का आधार है और पौधों के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। पानी के बिना बीज अंकुरित नहीं हो सकते।
सही बात है,
पोषक तत्व जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच सकते और पौधे अपना भोजन मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं बना सकते। पानी पौधों को गर्म हवाओं और पाले से भी बचाता है। इसीलिए सही समय पर और सही मात्रा में फसलों को पानी देना, यही इरिगेशन है।
पानी की जरूरत तो अलग अलग फसल में अलग होती होगी।
हाँ बिल्कुल, हर फसल हर तरह की मिट्टी और हर मौसम में अलग अलग होती है। जैसे धान की फसल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए जबकि गेहूं या चने को कम। गर्मियों में जाहिर है ज्यादा पानी देना पड़ता है क्योंकि वाष्पीकरण इवेपोरेशन तेज होता है। पानी के स्रोत भी कई हो सकते हैं, कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, झीलें, नदियां, बांध, नहरें।
सिंचाई के तरीकों के बारे में क्या बताया गया है?
हाँ, सिंचाई के तरीके भी समय के साथ बदले हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि मोट, कुएं से घिर्री द्वारा पानी निकालना, चेन पंप, ढेकली, लकड़ी के डंडे से पानी उठाना, राहत, बैलों से चलने वाली चरखी।
हाँ, ये पुराने तरीके सुने हैं।
ये तरीके सस्ते जरूर थे लेकिन इनमें पानी की बर्बादी बहुत होती थी और मेहनत भी ज्यादा लगती थी।
अच्छा,
इसीलिए अब मॉडर्न मेथड्स पर जोर दिया जाता है जो पानी बचाने में माहिर हैं।
मॉडर्न मेथड्स?
जी, कौन से?
पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा विधि।
अच्छा, फव्वारा।
इसमें पाइपों का जाल होता है जिनमें घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। पानी दबाव के साथ इन नोजल से निकलता है और बारिश की फुहारों की तरह फसल पर पड़ता है। ये ऊंची नीची अनइवन जमीन और रेतीली मिट्टी के लिए बहुत कारगर है जहां पानी आसानी से बह जाता है।
ठीक है।
दूसरा और इससे भी ज्यादा पानी बचाने वाला तरीका है ड्रिप सिस्टम, टपक विधि।
हाँ, इसमें पाइपों का नेटवर्क सीधे पौधों की जड़ों के पास बिछाया जाता है और पानी बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधे जड़ों में टपकता है।
अरे वाह, सीधे जड़ों में?
हाँ, इसमें पानी की बर्बादी लगभग न के बराबर होती है। फलदार पौधों, बगीचों और पेड़ों के लिए ये वरदान है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पानी की भारी कमी है।
तो मतलब ड्रिप सिस्टम पानी की बचत का चैंपियन है। ये तो कमाल की तकनीक है, खासकर आज के समय में जब पानी की कमी एक बड़ी समस्या है।
बिल्कुल।
अच्छा, फसल बढ़ रही है, पानी मिल रहा है, लेकिन खेत में सिर्फ हमारी फसल ही नहीं उगती, कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, वीड्स यानी खरपतवार।
हाँ, वीड्स।
इनसे निपटना क्यों जरूरी है?
ये बिन बुलाए मेहमान यानी वीड्स असल में मुख्य फसल के दुश्मन होते हैं। ये खेत में उगकर हमारी फसल के साथ पानी, पोषक तत्वों, जगह और धूप के लिए मुकाबला करते हैं।
अच्छा, कंपटीशन करते हैं?
हाँ, कंपटीशन। इससे मुख्य फसल को जरूरत की चीजें कम मिलती हैं और उसकी बढ़त रुक जाती है, उपज कम हो जाती है। कुछ खरपतवार तो कटाई के समय भी दिक्कत पैदा करते हैं और कुछ इंसानों या जानवरों के लिए जहरीले भी हो सकते हैं।
ओहो।
इसलिए इन्हें खेत से हटाना बहुत जरूरी है और इस प्रक्रिया को वीडिंग कहते हैं।
वीडिंग
कैसे करते हैं?
वीडिंग का सबसे सही समय होता है खरपतवार में फूल और बीज आने से पहले।
अगर बीज बन गए तो वो मिट्टी में मिलकर अगली बार फिर आएंगे।
हाँ, ये तो है।
इन्हें हटाने के कई तरीके हैं। एक तो है फिजिकल मेथड, जिसमें हाथ से उखाड़ना या खुरपी, ट्रवल जैसे औजार से जड़ समेत निकालना शामिल है। खेत की जुताई, प्लाउइंग के समय भी बहुत से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं।
हाथ से निकालना।
दूसरा तरीका है केमिकल मेथड, जिसमें रसायनों का इस्तेमाल होता है जिन्हें वीडीसाइड्स कहते हैं।
वीडीसाइड्स, दवाइयां?
हाँ, दवाइयां, जैसे 2,4-D। इन्हें पानी में घोलकर स्प्रेयर से खेत में छिड़का जाता है। ये आमतौर पर खरपतवार को तो मार देते हैं पर मुख्य फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते।
अच्छा।
लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। छिड़काव करने वाले को अपना मुंह नाक कपड़े से ढकना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
हाँ, ये जरूरी है।
साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि ये पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं और फसल में इनके अवशेष न रह जाएं।
ठीक है, फसल अब बड़ी हो गई, पक गई, अब आता है वो समय जिसका किसान बेसब्री से इंतजार करते हैं, कटाई, हार्वेस्टिंग। ये यकीनन खुशी का मौका होता होगा।
हाँ बिल्कुल, हार्वेस्टिंग यानी पकी हुई फसल को काटना, ये किसान की महीनों की मेहनत का फल होता है। भारत में ये काम आज भी काफी हद तक हाथ से दराती की मदद से किया जाता है।
दराती से? हाँ।
बड़े खेतों में मशीनें जिन्हें हार्वेस्टर कहते हैं इस्तेमाल होती हैं।
हार्वेस्टर।
कटाई के बाद अगला काम होता है अनाज के दानों को भूसे, चाफ और डंठल से अलग करना। इसे थ्रेशिंग कहते हैं।
थ्रेशिंग
ये हाथ से पीटकर या आजकल मशीनों थ्रेशर से किया जाता है। बड़ी मशीनें तो ऐसी भी आती हैं जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों काम एक साथ करती हैं, उन्हें कंबाइन कहते हैं।
अच्छा, कंबाइन, वो दोनों काम कर देती
है। हाँ, छोटे किसान अक्सर थ्रेशिंग के बाद अनाज और भूसे के मिश्रण को हवा में उछाल कर अलग करते हैं।
हाँ, वो हवा से उड़ाते हैं।
बिल्कुल, हवा से हल्का भूसा उड़कर दूर गिर जाता है और भारी अनाज के दाने नीचे ढेर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विनोइंग उसाई कहते हैं।
विनोइंग।
ये सब करने के बाद अनाज को बोरियों में भरकर मंडी या घर ले जाया जाता है।
और अब आता है आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव। इतनी मेहनत से जो फसल उगाई और काटी गई है उसे सुरक्षित रखना, भंडारण, स्टोरेज, ये क्यों इतना अहम है?
स्टोरेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अनाज को सही ढंग से स्टोर न किया जाए तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है।
सही बात है।
सही बात ही।
नमी, कीड़े, चूहे और फफूंद जैसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अनाज के दुश्मन हैं।
हाँ, ये तो खराब कर देते हैं अनाज को।
बिल्कुल, ताजी कटी फसल में काफी नमी, मॉइस्चर होती है। अगर उसे बिना सुखाए बंद करके रख दिया जाए तो उसमें फफूंद लग सकती है या कीड़े पड़ सकते हैं, जिससे अनाज खाने लायक नहीं रहता और उसकी अंकुरण क्षमता भी खत्म हो जाती है।
तो सुखाना बहुत जरूरी है।
हाँ, भंडारण से पहले सबसे जरूरी काम है अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना, ताकि उसमें नमी की मात्रा कम हो जाए। घरों में या छोटे पैमाने पर किसान अनाज को जूट के बोरों या धातु के बड़े ड्रमों, मेटालिक बिन्स में रखते हैं। अक्सर इनमें सूखी नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं।
नीम की पत्तियां? क्यों?
नीम में कीटनाशक गुण होते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं। ये एक पारंपरिक और कारगर तरीका है।
अच्छा, लेकिन जब अनाज का भंडारण बहुत बड़े पैमाने पर करना हो, जैसे सरकारी गोदामों या बड़ी मंडियों में, तो साइलोज, धातु के बड़े ऊंचे टैंक और ग्रैनरीज, बड़े पक्के गोदाम का इस्तेमाल होता है।
साइलोज और ग्रैनरीज?
हाँ, यहाँ अनाज को कीड़ों, चूहों और नमी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम होते हैं। जैसे गोदामों को नमी रोधक बनाया जाता है और समय समय पर रासायनिक धूमन, फ्यूमिगेशन किया जाता है, ताकि कीड़े और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं।
अच्छा, केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है?
हाँ, सुरक्षित भंडारण से ही अनाज साल भर उपलब्ध रह पाता है।
ये तो हुई पौधों से भोजन पाने की पूरी कहानी, लेकिन हमारा भोजन सिर्फ खेतों से नहीं आता, पशुओं से भी आता है।
बिल्कुल,
अध्याय का आखिरी हिस्सा इसी पर है, पशुओं से भोजन, फूड फ्रॉम एनिमल्स, और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री।
एकदम सही, जैसे पौधे हमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां देते हैं, वैसे ही पशु भी हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा हैं। गाय, भैंस, बकरी हमें दूध देती हैं, जो कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है।
दूध।
मुर्गी, बतख से अंडे, एग्स मिलते हैं, जो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। बकरे, मुर्गी, मछली से मांस मिलता है, जो प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। मधुमक्खी पालन, एपिकल्चर से हमें शहद मिलता है।
हाँ, शहद भी।
ये सभी पशु उत्पाद हमारे संतुलित आहार के लिए जरूरी हैं। जब हम भोजन या अन्य जरूरतों जैसे ऊन, चमड़ा के लिए बड़े पैमाने पर पशुओं को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें सही चारा पानी, रहने की जगह और स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं, तो इसे एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन कहते हैं।
अच्छा, बड़े पैमाने पर पालना एनिमल हस्बेंड्री है।
हाँ, इसमें पशुओं की नस्ल सुधार, ब्रीडिंग पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि उनसे बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा मात्रा में उत्पाद मिल सकें। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मछली पालन, पिसिकल्चर, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के ही हिस्से हैं।
ठीक है, तो संक्षेप में ये अध्याय हमें सिखाता है कि भोजन पैदा करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी तैयार करने से लेकर सही बीज चुनने, पोषण और पानी देने, खरपतवार हटाने, कटाई करने और फिर उसे सुरक्षित रखने तक हर कदम महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल।
साथ ही ये पशुपालन के महत्व को भी उजागर करता है।
एकदम सही।
ये हमें उन बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों और कृषि पद्धतियों से परिचित कराता है जो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
ये किसानों की कड़ी मेहनत और वैज्ञानिक समझ के तालमेल को दर्शाता है। ये जो 7 कृषि पद्धतियां हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये एक सफल फसल के लिए अनिवार्य है।
सचमुच। अब जब हम खाना खाएंगे तो शायद हमें उसके पीछे की ये पूरी प्रक्रिया, किसान का पसीना और विज्ञान का योगदान ज्यादा स्पष्ट रूप से नजर आएगा।
उम्मीद तो यही है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए चलिए एक सवाल पर विचार करें।
हाँ।
दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है, ऐसे में भविष्य की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कृषि तकनीकों के बीच कैसा संतुलन बनाना होगा?
ये तो सोचने वाली बात है।
क्या पूरी तरह तकनीक पर निर्भरता सही है या पारंपरिक तरीकों में भी भविष्य के जवाब छुपे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।
जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।
बिल्कुल। धन्यवाद।